उसी समय वो खोला पोथा और लग्या सुनाने संस्कृत में। पहले ताप पढ़िया, फिर से देखा भैया तो बात बिगड़ी सारी साची समत है। पर उस समय ये यही हमें परेशानी थी कि आम जनता शिक्षित नहीं थी। परमात्मा किसने समझावर क्यों कर बतावे कि सच्चा लिखा है ये झूठ बोल रहा है, ये मैं ऋषि की फीत लाकर झूठ बोल रहा है। यह है शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। नीचे देखो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसमें इसके प्रकाशक कौन है, ये वही है संक्षिप्त शिव महापुराण। नीचे देखो संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और कहां से इसका प्रकाशन हुआ है। ऊपर देखो प्रकाशक गोविंद भवन कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, यहां से ये प्रकाशित है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर और इसके पृष्ठ नंबर यहां से पढ़ेंगे। ये पृष्ठ नंबर 100 पर देखें, यहां नीचे आए ये रुद्र संहिता, ये है संक्षिप्त शिवपुराण। इधर देखो रुद्र संहिता और यहां नीचे आ जाए ये छठा अध्याय है। इन्होंने अध्याय को नीचे जाकर लिखा, यहां देखना। अब ये कौन बोल रहा है शिवपुराण को, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। शिव जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किया जाता है, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति आकार की कल्पना की। जिसको तुम निराकार कहते हो वो फिर आकार बन गया। आकार में के बना, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति है। जिनमें आकार अर्थात भगवान सदाशिव है, युग काल गुप्त रहता है और यहाँ शिव ब्रह्मा विष्णु रूप धारण करके ही लीला कर देता है। तो ये कहते भगवान सदाशिव है, वो निराकार भगवान जब आकार में आया तो भगवान वो सदाशिव बन गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी है, तीनों देवताओं की माता त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी माता नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कति स्पष्ट कर दिया, किसी का शंका ना रह जाए कि दुर्गा के विषय में ये सब कहानी कही जा रही है और ये सदाशिव कौन है, ये काल रूपी ब्रह्म। नीचे देखो वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और परमेश्वर कहते हैं। आगे देखो वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ये समझने की बात है कि सदाशिव यो काल ही लीला कराए, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के, ये 7 शब्द है, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, ये काल और दुर्गा जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से इंद्र नारद बता रहा है, देवर से एक समय ना वो ब्रह्मा बता रहा है, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, कोई बच्चा पैदा करना चाहिए। आगे देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने बाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ यानी पति पत्नी व्यवहार किया, जिससे उनको एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम के रखा। ये देखो, तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामीन जो लड़का पैदा हुआ मेरे नाम निश्चित करके कहिए, कीजिए मेरा काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, शिव ने कहा वत्स जो बेटा उत्पन्न हुआ था दुर्गा और शिव काल का सदा शिव का उस ब्रह्म का उसने तो शिव उस काल ने कहा वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसे सिद्ध हुआ कि विष्णु का जन्म है, उसके माता पिता सदाशिव ये काल और ये दुर्गा है। आगे देखो, यहाँ देखो, इधर ला मेरा कितने का इधर ला नीचे पीछे कर ले थोड़ा सा, ये सात ये नीचे देखना, इधर इधर यहाँ देखो, ये सातवा नीचे देखो, ये छरा अध्याय नंबर 6 समाप्त हो गया रुद्र संहिता का। अब ये सातवा प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से, ये नर्द को बता रहे हैं ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, तत्पश्चात यानी विष्णु की उत्पत्ति के उपरांत मेरी भी उत्पत्ति इन्हीं दोनों से हुई। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे वो सदाशिव और जैसे विष्णु की उत्पत्ति हुई थी पूर्ववत उसी तरह, और उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उसका उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरी चार मुख हुए, शरीर की सकांति लाल हुई, मेरे मस्तक त्रिपर्ण की रेखाएं अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक व पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ? किसने इस समय मेरा निर्माण किया है? अब इससे क्या हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु जी की उत्पत्ति सदा शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म थे और दुर्गा से प्रमाणित कर दी इस शिव महापुराण में। इसमें ये लेखक असमंजस में गिर गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं? आगे देखो, अब हम आपको थोड़ा हिंट ही देंगे, वैसे तो इसमें बहुत मसाला है। अब यहां देखिएगा, अब ये नौवां अध्याय है, अध्याय नंबर 9 में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु वह शिव ये चौथा कौन है ये समझने वाली बात है। परंतु वह शिव गुणातीत माने गए हैं। ब्रह्मा विष्णु और ये रुद्र यानी शंकर इनमें तो गुण है देवताओं में, और वो चौथा गुण है, वो चौथा जो भगवान है वो इनसे न्यारा है। अर्थात ये चारों ही, ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और इस काल के पुत्र हुए। और अभी आपने पढ़ा था इस शिव पुराण में कि ये दुर्गा त्रिदेव जननी है, त्रिदेव जननी तीनों देवताओं की माँ। अब देवी भागवत महापुराण देखिएगा, इसमें कति स्पष्ट कर दिया, हे भगवान कहते एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिवजी और देखा। वो शिवजी कौन है, एक और जो देखा वही भी, ये चार यहाँ आपके सामने आए हैं, यही वेद वहां दिया जाएगा, ये क्लियर कर देगी, बिल्कुल स्पष्ट करेगी। श्री देवी भागवत केवल हिंदी सतीतर मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हमें यही लाभ हुआ है शिक्षा का और आधुनिक उपकरणों का। ये काल नचार तक आए थे जीव जान खाते कि ये सारा दिन बकवाद सुने जाएंगे, टीवी टैवी या फिल्म बना दिए, किसी टाइम भी ऑन कर ले टीवी ने, सारे गाने बजाने बकवाद भरी पावे को किसी टाइम सुन लो। और ये मारे काम आगे हिस्से का लठ हिस्से के सिर पर लग लग गया कि अब इस ये आधुनिक उपकरण हमारे काम आगे, सब अपने बहन भाइयों को अपने परमात्मा की महिमा अख्यां दिखावाएंगे। सब अक्सर ज्ञान सबको है ही आज, और दस भेज दिया इसका निर्णय करने के लिए, दो मिनट में समझ में आ जाएगी। बना बड़ा मसाला निकला निकला मक्खन मिलेगा आपको, और खाइयो मुड़ी चाटियो, ये देखना। श्री मद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, और प्रकाशक है इसके गोविंद भवन कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, इसके तीसरे शकंद में, तीसरे शकंद में बिल्कुल निर्णय दे रखा है। जन्म जे पूछ रहे हैं व्यास जी से, और फिर व्यास जी बता रहे हैं कि मैंने भी नारद जी से पूछा था। नारद जी ने बताया कि मैंने जो अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था वो ज्ञान तुम्हें बताते हैं, यहां देखना। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं दुर्गा को, वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। प्रकृति, ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को कहते हैं। ये आपको गीता जी को समझते समय चौदहवें अध्याय में काम आएगा, तीसरे और चौथे पांचवें मंत्र में। प्रकृति माने दुर्गा, प्रकृति का समझो ये दुर्गा है, बस इतना सा समझकर हमने चलना पड़ेगा। ब्रह्म के साथ, ये काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन के साथ उनका अभेद संबंध है, अर्थात पति पत्नी का व्यवहार है, पति पत्नी का संबंध है। नीचे देखें, यहां देखें, व्यास जी कहते हैं महाभाव कुरुवंशी राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो, तुमने जो बात पूछी है, जन्म जे को व्यास जी बता रहे हैं कि जो तूने मेरे से पूछा है, वे तुमने जो मुझसे पूछी हैं, जो बातें तुमने मुझसे पूछी हैं, वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु जी इसके रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभो आप विश्व की आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी को पता है कि इनको ज्ञान तो पूरा है नहीं, और जब ज्ञान नहीं पूरा है तो गपोड़ भी पेल सकते है, तो कहते हैं सच्ची बात बताइए पिताजी, झूठ ना बोलिए। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है। नीचे देखो, पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, शथा और जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे, तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय सूर्य चंद्रमा वृक्ष पर्वत आदि कोई भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहे थे, कोई भी दिखाई नहीं दे पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, मेरा कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है, यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया। नीचे देखो, यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी, कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी इसमें सृष्टि करो की ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा, तब कमल का डंठ पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वन माला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा पदम इन 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष स्याही भगवान विष्णु के दर्शन मुझे दर्शन हुए। वहां ये काल ने यो विष्णु बेहोश करके डाल रखा था शेष नाग के ऊपर। वे योग निंद्रा में वसीभूत होकर गहरी गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टा शांत थी। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया, तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से ये दुर्गा अन्य रूप बनाकर और विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इसको बेहोश कर रही थी भूतनी की तरह। और यहाँ स्पष्ट लिखा है कि विष्णु के विग्रह से निकलकर वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। जो अब भूतनी निकल गई तो विष्णु जी उसमें आ गए। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। ऊपर दुर्गा दिख रही थी, वो भूतनी निकली उसमें विष्णु जी में ते उसके सारे वाभूषण भी दिखे थे। गणे गुणे पैर रखे थे, वह स्पष्ट दिखाई देती। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। भूतनी निकलते हैं उसमें आगे, जैसे आप देखते हो यहाँ पर जब तो भूत बड़े रहे हैं, बाण बिट्टी भाई पड़े रहे, ऐसे टक्कर मारते रहते, वो भाग जाती है तो हौस मार कर ठीक ठाक बैठ जाते हैं। अब यही हालत इन भगवाना की काल में कर रखी है। जिसको हम पूजा के दिन को हम पूजा करते थे, वो स्वयं ही ऐसा है, काल के विवश है, काल के वश पड़े हैं। उन्हें मधु और कैटर के साथ तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे भी, क्योंकि भगवान विष्णु से 5000 वर्ष तक दो राक्षस नहीं मर पाए। समर्थता का यहीं पर पता लगता है। और मरे भी कैसे, पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। दुर्गा नीचे ने आई, सुंदर लड़की का रूप बनाया और वो दुष्ट आत्मा उसको तरफ बुरी नजर से देखने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। अब दुर्गा ने सहयोग दिया जब विष्णु उनको मार पाया। अब वहां मैं ब्रह्मा और भगवान विष्णु दो थे, वहीं पर ये शंकर भी द्रुदर भी प्रकट हो गया। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्या शक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर एवं सुखप्रद थी, हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सृजनाधिकारी में करने में सफल हों, विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया, तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठिए। यहाँ देखो, हम तीनों देवताओं को उस पर बैठा देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। अपनी शक्ति दुर्गा ने आकाश में विमान उड़ा लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। नीचे देखो, अक्षण भर के बाद वह दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे, उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उनके स्वर्ग सदृश को देखकर हम आश्चर्य में पड़ गए। अब वहां महास्वर्ग में चले गए, वहां पर एक और विष्णु था, एक और ब्रह्मा था, शिव जी था, इंद्र था। हम आश्चर्य चकित हो गए। नीचे देखो, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्म लोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे, एक एक ब्रह्मा विष्णु, एक ब्रह्मा एक विष्णु एक शिव तो विमान में बैठे, आगे फिर ब्रह्म लोक में कौन देखे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे, उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है। मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि के अधिष्ठता ये कौन है, भगवान मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा क्या उद्देश्य है, इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। जब इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने नवेर अपने बाप और माँ के विषय में इन कोई गुड़जाए बैठे तो आम जीव को कैसे रास्ता देंगे, ये सोचना भाइयों। यहाँ देखना, वहाँ बहुत से इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही वो तीसरे भगवान शंकर निकले। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्षभ पर बैठे थे। आगे देखो, उनके यहाँ देखो, अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन, जो हमारे साथ विष्णु बैठा था विमान में, आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, एक विष्णु और बैठा था। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह यानी शरीर की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, चार भुजाएं थी, पक्षी राज गुरुड़ पर विराजमान थे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल का जल वाला समुद्र था मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था, जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। वही एक मनोहर द्वीप था, एक नार टापू सा था। नीचे देखो, उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। अब दुर्गा ने वहां जाकर दूसरा रूप बना लिया। उनके गले में लाल रंग की माला थी, लाल वस्त्र से श्री विग्रह सुशोभित था, लाल चंदन लगाए हुए थी, लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक सुंदर थी। यहाँ देखना, उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। हम कुछ समय तक वहीं ठहरे, आपस में कहने लगे, सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते। नारद यों संदेह ग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। भगवान ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने बेटे नारद को। तब भगवान विष्णु ने उन चारों सहनी भगवती को देख कर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, महा अविद्या है, महाविद्या महामाया इनके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है, प्रकृति दुर्गा को कहा जा रहा है। ये सर्वेश्वरी गर्भा एवं शिवा कहलाती है, प्रकृति और शिवा इसी को कहते हैं। अब ये क्या है कि ये तीनों वहां पहुंचे, विमान में इनको बैठा कर काल ने, दुर्गा ने काल के आदेश से ऊपर भेज दिया। ये वहां उन्होंने कहां पहुंचे, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और वहां जाकर के इन्होंने क्या देखा, ये देखिएगा ये कहां गए, एक ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड का ही ब्रह्मा विष्णु महेश को पूरा ज्ञान नहीं है, और विद्वानों ऋषियों को महर्षियों को तो होगा कहां से। ये एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र, यहां देखना, ये पूरा ब्रह्मांड है। अब यहां इस ब्रह्मलोक में पहले इनका विमान यहां पहुंचा, ये महास्वर्ग में, इससे फिर ये कहां पहुंचे, इधर दिखाते हैं आपको, ये वही ब्रह्मांड का, ये सबसे पहले यहां पहुंचे, और इसके बाद ये इसमें पहुंचे, इंद्र महाद्वीप, इंद्र में, इंद्र का द्वीप है ये, महास्वर्ग में इंद्र देखा, एक और देवी देखी, इंद्र की पत्नी देखी, फिर वापस विमान यहां से आए, फिर यहां से चलकर ये विमान, ये एक और गुप्त स्थान है इस काल का, जहां पर इसने तीन अक्षेत्र बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान। अब यहां आ जाते हैं, ये सबसे पहले ब्रह्मा लोक, वहां काल जो महाब्रह्मा रूप में रहता है, अपनी पत्नी दुर्गा को मां सावित्री रूप में रखता है, यहां देखा एक ब्रह्मा, और थोड़ा पीछे करो, बस ये यहां पहुंचे। इसके बाद ये यहां पहुंचे, विष्णु जी का एक और लोक देखा, ये शिव जी के लोक में पहुंचे, वहां एक शिव और देखा, फिर यहां पहुंचे, ये एक विष्णु और देखा, साथ में लक्ष्मी देखी। ये तब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, जहां ये काल महाविष्णु रूप में रहता है, यहाँ ये स्वयं काल ही महाशिव रूप में, सदाशिव रूप में यहाँ रहता है, अपनी पत्नी को भी साथ रखता, दुर्गा को अन्य रूप ना कह। और ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, ये स्वयं यहाँ रहता है। तो इन्होंने ये सब देखा, एक ब्रह्मा, एक शिव, एक विष्णु और देखा, ये काल ने ही अपने अन्य रूप स्थान स्थान पर बना लिए। जो ही इनका विमान यहाँ पहुंचा तो इस रूप में प्रकट हो गया, जब यहाँ पहुंचा तो इस रूप में, जब यहाँ पहुंचा ये विष्णु रूप में, फिर ये इस दुर्गा के लोक में आ गए। अब यहाँ आने के बाद ये क्या सोच रहे हैं कि इस दुर्गा को, माई को हमने नहीं देखा कभी, कौन है। विष्णु जी को फिर काल ने चेतना प्रदान कर दी, वो बचपन की याद आ गई, तब उसको वो चेतना आई पिछले अपने छोटे जीवन में, क्योंकि काल ने क्या किया था, दुर्गा के द्वारा इसको, इनको गृहोंश करवा दिया था, जन्म जब ये थोड़े से बालक से थे, थोड़े से थोड़ा देखने जब जब थोड़े बहुत समझने योग्य हुए, तभी इनको बेहोश करवा दिया। तो अब विष्णु जी को याद आयो, हो ये तो अपनी माँ है, ये मुझे पालने में जुलाया करती और लोरी दे दे मुझे गाने सुनाया करती, ये तो अपनी माँ है, बेटा मुझे याद आ गया, या तो भाई अपनी माँ है, ये देखो वही गीता देवी भागवत नीचे आई है 120 पृष्ठ पे, ये वे ही दिवांगना है। यहां से पहले देखिए 119 पृष्ठ से फिर आइए। नारद जो संदेह ग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे, तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, यानी हमें जन्म देने वाली है, महाविद्या महामायन के नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। यहाँ देखो ये विश्वेश्वरी और वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती है। आगे देखो 120 पृष्ठ पे भगवान विष्णु क्या बता रहे हैं। ये वे ही द्वांगना हैं जिनके, विष्णु जी कह रहे हैं कि ये वही देवी है प्रलय वर्ण में जो पाणियों पाणी था सारे के मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने में जुला रही थी, वट वर्ष के पत्थर पर सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में चूस रहा था। ये वे ही देवी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही, इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई है। विष्णु जी कह रहे ये हम सबकी जननी है, इनके विषय में मेरी जितनी भी जानकारी है तथा मैं कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ सुनो। आगे देखो क्या कहा इसने सतुति की विष्णु ने अपनी माँ की 123 नंबर पृष्ठ पे नीचे लिखो। तुम शुद्ध स्वरूप हो, दुर्गा की स्तुति करते हैं तीनों खड़े होकर। विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूप हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान है, हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो और प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान ही हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। जय हो बंदी छोड़ की। अब परमात्मा सर्वानंद से कह रहे हैं कि और पढ़, रुक क्यों है, और पढ़। वो पढ़ रहा है संस्कृत में और समझ रहा है सारी अंदर ही अंदर, लेकिन मान बढ़ाई के भूखे ने अपनी उस सच्चाई को ऊपर नहीं आने दिया। परमात्मा ने कहा कि और निकाल ले, तू तो सारे पोथे साथ ले आ, गीता जी और निकाल ले। गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में पढ़ कर सुना दे सच्ची आत्मा का, परमात्मा को साक्षी रख के। लेकिन वेदों और गीता तक सीमित जो प्राणी है उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, और पूर्ण ज्ञान जिसके पास नहीं है तो वो कहीं ना कहीं घिर जाता है, और जब वो गिर जाता है तो झूठ का सहारा लेना उसकी व्यवस्था हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस कुरुक से प्रकाशित है, और देखना ये है अध्याय नंबर 14 और 3, 4, 5 ये देखना। इधर तीसरे मंत्र में क्या कहा, ये काल के कह रहा है, गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म, ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, यह मेरी ब्रह्म यानी मूल प्रकृति, तो ये वैसे माम ब्रह्म है, माम ब्रह्म लिखना था, यहां देखो ऊपर मूल संस्कृत, ये मम योनि महत ब्रह्म, इस ये संस्कृत उलट सोट जुड़ा करे, मम ब्रह्म मुझ ब्रह्म की, यह महत माने प्रकृति, इसका ये अर्थ बनता है। चलो ए अर्जुन मेरी, इन्हीं के हिसाब चलते हैं, महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सभी प्राणियों की भूतों की योनि अर्थात गर्भदान स्थान है, और मैं अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म तस्मीन माने उसकी योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। ततः माने उससे, ततः माने उससे होता है, उस जड़ चेतन के नहीं, उस के संयोग से सर्वभूतानाम सभी प्राणियों की भूतों की उत्पत्ति होती है। चौथे में क्या कहा है, चौथे में कहा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में प्राणी, जितने भी मूर्तियां शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, या प्रकृति है दुर्गा, प्रकृति तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। ब्रह्म बोल रहा है गीता जी को, सदाशिव काल बोल रहा है। आगे देखो पांचवें मंत्र में, चौदहवें अध्याय के पांचवें श्लोक में कहा है कि ये हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिवजी, ये तीनों प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न है, दुर्गा से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण, तीनों भगवान अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। यही कर्मों के आधार पर सथा यहाँ उत्पत्ति, स्थिति और सहार के चक्कर में डाले रखते हैं। बताओ के काची छोड़ दी भगवान ने, सब कुछ बता दिया कि दुर्गा की माँ है, दुर्गा या प्रकृति को दुर्गा कहते हैं, और ये प्रगट प्रमाण दे दिया, प्रत्यक्ष दे दिया। अब सर्वानंद मटर मटर देखे अखबार तो सारी साची, पर कौन इन जो श्रोत्रा है न किसी को पता नहीं अक्षर ज्ञान का, कहने लगा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, सारा कुछ देख के भी नहीं बता, झूठ बोलता है, ये क्या जाने शास्त्रों के बारे में, अक्षर ज्ञान का पता नहीं, मात्राओं का ज्ञान नहीं, अनंतों का ज्ञान नहीं, निगुट्टू नहीं पड़े, निगुट्टू फूकने हमने भगवान पर दिया, सारा कुछ जान दिया हमने, निगुट्टू निकटू तो तम हो ही न पढ़ पढ़ गए, निकटू हो गए, निकटू अन पढ़ गए, हम तो वो ज्ञान पढ़ेंगे अमृत परमात्मा, सिंपल लैंग्वेज दे रखी। अब सर्वानंद कहता है नहीं, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अब वो सारा पढ़ लिया, वो नहीं बोला, फिर और सुनानी शुरू कर दी, कोई गद्या है किसी वेद का ठाक है, डटा नहीं डटा, बोलेगा संस्कृत, बोलता रहा बोलता रहा। अब वो श्रोता बैठे थे, कबीर साहब चुप हो गए, के बोला नाड़ी के साथ में आख्या देखी ना मानता, ये शास्त्रार्थ की तरह से जलम आदमी थे। अब सब श्रोता जब वो संस्कृत बोल रहा था ना, सब पीड़ित थे, सब श्रोता वो अनपढ़ अशिक्षित जुलाहे लोग धानकों ने, और ताड़ी पीट दी, वाह सर्वानंद वाह सर्वानंद वाह सर्वानंद। अब उनके ताड़ी पीटन थे जिन्हें क्या क्या ज्ञान नहीं था, सर्वानंद विजयी हो गया। इन्हों शास्त्रार्थ होया करते हैं। एक झलक दिखाता हूं महर्षि दयानंद के साथ शास्त्रार्थ की, इन डांगरा निशा नाश कर रखा है भगवान। अब कहां तक कहां कहां समझावे, कित कित तेंगे खोदे हुए खड़ा, कहां तक अटे इंसान है परमात्मा। आपको दिखाते एक झलक शास्त्रार्थ कैसे होते थे महर्षि दयानंद का और एक पंडित का। ये भी पांडा था, महर्षि दयानंद भी पांडा था। ये है श्री मद दयानंद प्रकाश, स्वामी सत्यानंद इसके लेखक हैं, प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। ये यहां से प्रकाशित है, छापी गई है, इसका ये सत्यानंद लेखक है। और यहां देखो प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 दयानंद भवन नई दिल्ली, और इनके लेखक है, लेखक आपने ये देख ही लिया यहां पर, ये है लेखक, लेखक है स्वामी सत्यानंद जी, और प्रकाशक नीचे आप देखिए वही है आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन दिल्ली नई दिल्ली। इसके 89 पृष्ठ पे शास्त्रार्थ की एक झलक दिखाते हैं, 89 पृष्ठ पे गंगा कांड में, यहां देखिए क्या लिखा है कि 3 दिन तक प्रति साये कृष्णानंद जी और स्वामी जी का शास्त्रार्थ होता रहा। एक दिन एक कृष्णानंद नाम ब्राह्मण था उसके साथ और इस दयानंद जी का शास्त्रार्थ होया। शास्त्रार्थ के समय किसी ने कृष्णानंद जी से कहा, महाराज महादेव पर जल चढ़ा आऊं। स्वामी जी ने बीच में कह दिया कि वहां तो पत्थर है, यहां तो पत्थर है, महादेव नहीं है। इससे चिढ़कर कृष्णानंद जी ने साकारवाद का अवलंबन किया और इसी पर शास्त्रार्थ चलाया। स्वामी जी यानी दयानंद जी का तो ये मनचाहा विषय था। उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हुए निराकार सिद्धांत पर धारावाहिक उन्होंने यानी श्रीकर स्वामी जी ने धारावाहक संस्कृत बोल दी दयानंद जी ने, यानी डटा नहीं डटा बोलेगा बोलेगा बोलेगा। तो निराकार सिद्धांत पर वेदों और उपनिषदों के प्रमाणों की एक झड़ी पिरोदी लड़ी पिरोदी और कृष्णानंद जी को उनका अर्थ मानने के लिए बाधित किया। कृष्णानंद कोई प्रमाण नहीं दे सका, केवल गीता का यह श्लोक यदा यदा ही धर्मश ग्लानिर्भवति भारत है, यानी ये श्लोक सुनाता रहा कि मैं प्रगट होता हूँ मैं प्रगट होता हूँ, जब धर्म की ग्लानी होती है, लेकिन नहीं सुना उसकी किसी ने। लोगों की ओर मुंह करके पढ़ने लगा। स्वामी जी यानी दयानंद जी गरज कर कहा, आप वाद मेरे साथ करते हो इसलिए मुझे ही अभिमुख कीजिए, परंतु उनको उनके तो विचारों की विचार ही उखड़ गए थे। किसके? कृष्णानंद के। वही वह चौकड़ी भूल चुका था, मुख में झाग आ गए, गले में घिघी बंध गई, तेरा फीका पड़ गया, किसी प्रकार लाज रह जाए। इससे उसने तर्क शास्त्र की शरण लेकर के स्वामी जी को कहा, अच्छा तो लक्षण का लक्षण बताइए। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जैसे कि कारण का कारण नहीं, वैसे ही लक्षण का लक्षण नहीं। लोगों ने है अपनी हंसी से सारे दांतरे काट दिए, जिन अज्ञानी का ज्ञान नहीं था वो श्रोता बोले वालों ने अपनी हंसी से दांतरे निकाल दिए, हा 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 कह दिया, और कृष्णानंद जी की हार प्रकाशित कर दी और वह घबरा कर वहां से चलता बना। अरे वाह कितना बढ़िया, ठोक ठोक कर जचा जचा के लिख रखा कि ऐसे विजयी हो गए श्री स्वामी दयानंद जी। और किसने फैसला किसने किया? अनजानों जी संस्कृत जानते भी कोई नहीं थे, और उन्होंने हंसी कर दी। और अब सर्वानंद वो कृष्णानंद तो ठीक उठ गया, मूर्ख गेला कौन माथा मारा। जब वो शास्त्रार्थ करता सही कह रहा है कि गीता में परमात्मा साकार लिखा है कि जब भी धर्म की ग्लानी होती है अर्जुन, परमात्मा प्रगट होता है, साक्षात्कार आता है। लेकिन उसकी ना सुनी कि वो संस्कृत घनी याद कर रखी थी, टा 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 करके, और भगवान अपने आप को मैं ऋषि की पदवी पा गया। किन से? जिनको आप ज्ञान नहीं, ये शास्त्रार्थ ने गरगाल रखे। अब इनका वो याद आवे शास्त्रार्थ कर ले, शास्त्रार्थ करी, शास्त्रार्थ हो रहा उत्तर दो जनता को, उत्तर तो इनके पास है नहीं, और फिर झूठे आरोप ही लगाएंगे और क्या करें। जिस आदमी की पोल पाट जाए ना, जिसका धोखा पकड़ा जा, उसके माल में मिलावट कोई बता दे तो गाली गलौज पर आता है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। लेकिन अब इनकी दाल गल नहीं रही कि समाज शिक्षित है, अब इनको धिक्कार रहे हैं, इनकी सबकी बोलती बंद होगी। अब इस प्रकार ऐसे ही सर्वानंद जी की विजय घोषित कर दी उन अशिक्षित जुलाहों ने, और हंसी करके ताड़ी पीट कर जय जयकार लगा दी। सर्वानंद जीत गया और कबीर साहब हार गए। अब कबीर साहब ने कहा, अब जैसे ये तो ऐसी हालत होगी, एक समय एक किसान का पुत्र शिक्षा ग्रहण कर रहा था, और उसने अंग्रेजी में एक तो सिकलीव होती है अंग्रेजी में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, वो गोल्ड रखा था, और एक माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे यानी प्रस्ताव गोल्ड रखा था। एक दिन पिता पुत्र रविवार के दिन बैलगाड़ी लेकर के जा रहे थे, सामने से एक अंग्रेज आ गया, उसने हाथ का संकेत किया, गाड़ी में कार में बैठा था, नीचे उतर कर उनसे अंग्रेजी में पूछने लगा میں نے اس گاؤں جانا ہے، میرا رستہ یہ ٹھیک ہے یا میں غلط جا رہا ہوں، کرپا مجھے بتائیے. اب وہ زمیندار کسان کہنے لگا اپنے بیٹے تھے کہ بیٹا تو بھی تو انگریزی بولا کرے، تیں بھی تو انگریزی جانتا ہے، اور یہ انگریز کے اپنے اپنے ودوان سدھ کرنا چاہتا ہے. آج کاٹ دیش کی مروڑ، سنا دے انگریزی کہ ہم بھی انگریزی جانتے. لڑکا کھڑا ہو گیا اس پر گاڑی پہ اور کہنے لگا ہوا تھوٹی کے لیے پرارتھنا پتر انگریزی میں سنا دیا. آئی بیگ ٹو سے دیٹ آئی کین ناٹ کم ٹو اسکول، پلیز گرانٹ می، آئی ایم ایل ٹو ڈے، پلیز گرانٹ می ون ڈے لیو. یور فیتھفلی، اپنا نام بتا دیا. اب اس انگریز نے سوچا، دیکھ بدھ پوچھ رہا ہوں، رستہ بت سنا ہوا چھٹی کا پرارتھنا پتر، اے نکما، ماتھے میں ہاتھ مار کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑا. اب کسان نے اپنے بیٹے کی کڑ تھپتھپائی، واہ بیٹا آج تر میری عزت رکھ دی، ہرا دیا نا انگریز انگریزی بول کے. تب بیٹا بولا، پتا جی ابا کے ہے، وہ تو مائی بیسٹ فرینڈ، اور یاد تھا جو گاڑی چھوڑے گا بات جاؤ جب وہ سنا دوں. ہوتا ہے تو ایسے یہ شاستراتھ کرا کرتے تھے، پرسن کچھ ہے اتر کیا دے رہا ہے. پرماتما نے دو بات پوچھی تھی، کون گر ماں کا پتا ہے، کون وشنو کی ماں، شیو جی کا دادا کون، ہم نے دے بتا، اتر تھا ہی نہیں. پھر ٹین ٹین کریں اور کیا کریں، کہیں کا روڑا کر دیا شروع. اور یہ سوئم سویکار کرتے ہیں، ہم تو ناسوان ہے، ہمارا جنم اور مرتیو ہوتا ہے، اور ابھی تک ان کو مرتنج کالج سروج سروستیمان ساری سرشٹی کے رتنہار اور پھر تین لوگ کے بھگوان، انہیں بھی بتاویں. اب پرماتما نے کہا، بھائی ٹھیک ہے سروانند، آپ جیت گئے مار گیا، آپ جاؤ پھر، آپ جیت گئے مار گیا، اور یہی تجھے چاہیے تھا. سروانند جی کہنے لگے، ایسے نہیں جانے والا، میں پکا کام کر کے چلتا ہوں، پہلے مجھے لکھ دو کہ میں ہار گیا، سروانند جیت گیا. پرماتما بولے، بھائی یہ بھی آپ ہی لکھ لو، میں تو اشکشت ہوں، میں کیا لکھ کر دوں گا آپ کو، انگوٹھا لگا دوں گا. سروانند جی نے لکھ لیا شاسترارتھ میں، سروانند وجے ہوا، کبیر صاحب پراجیت ہوئے. انگوٹھا لگوا کے بھگوان کا اپنی ماں کے پاس آ گیا. اب ماں نے کہا، بیٹا آ گیا تم، کہا ماں آ گیا، کیا رہا تمہارا؟ کہ وہ تو جاتے ہاتھ جوڑ گیا میرے آگے، آپ کا گرو جی تھا، جاتے ہاتھ جوڑ دیے. انہوں نے بولا، بھائی تم جیتیا میں ہاریا، اور دیکھ یہ دکھوا لیا. تو ماں نے کہا، بیٹا پٹ کے سنا دے مجھے، ایک کے لکھوا کے لیا تم. اس میں کیا لکھا پایا کہ شاسترارتھ میں سروانند پراجیت ہوا، ہار گیا، اور کبیر پرماتما جیت گیا. اس کی ماں بولی، رے تو کہہ رہا تھا میں جیت کا ہوں، تو بیٹا ہار کا رہا ہے، اب تو ہار کر آئے ہو. اب سروانند کہتا، ماتا جی میں کئی دن سے شاسترارتھ میں لگ رہا تھا نا، رات میں نیند آ گئی تھی میں، اب بولی میرے لکھنے میں غلطی رہ گئی، وہ تو ہارے پڑیا ہے، ابھی جاتا ہوں، اب پھر لکھوا کے لاتا ہوں. اب بیل کو تو گھر باندھ گیا، پھر گیا جا کر کہنے لگے، آپ کے کبیر پرماتما کو کہتے ہیں، کبیر میرے سے لکھنے میں غلطی ہوگی، میں الٹا لکھ لے گیا، ایک بار پھر لکھوں گا، پھر دستک کرنے پڑیں گے آپ نے. کہا جی کئی بار کروا لو مہاراج جی، آپ جیت گئے میں ہار گیا، اب سچ کو کیسے ہم منع کریں گے، آپ کبھی لکھوا لو. پھر لکھ لیا اچھی طرح سوچ سمجھ کے، شاسترارتھ میں کبیر صاحب ہار گئے، سروانند وجے ہوئے، دستک کرا لیے. پھر جا کر کے اپنی ماں سے کہتا، لے ماں اب تک خوب جانتے لکھ کر لیا سوں، اب بیٹا پڑھ کر سنا دیتا ہے. پڑھ کر سنانے لگا، اس میں پھر وہی اکثر پائے، شاسترارتھ میں سروانند ہار گیا، کبیر صاحب جیت گئے. اس کی ماں بولی، رے بیٹا تو کتنے رستے میں لکھ کر نہیں لاوا ہے، وہاں تک پہنچے بھی ہے کہ نہیں پہنچتا تو؟ سروانند کہنے لگا، ماں کیا بتاؤں، میں تو کئی دن سے نیند نان میں رہ رہا تھا، اور آلسا بن جائے، غلطی ہو اب کا پھر لاتا ہوں لکھوا کے۔ اب تیسری بار تو پھر گیا پرماتما سے کہا، کبیر صاحب میرے سے غلطی ہوگی، لکھن میں فرق رہ گیا، میں کئی دن سے شاسترارتھ میں رات دن چلتا رہا، آلس بن گیا، میں نے غلط لکھ لیا۔ پرماتما بولے آ جا بیٹھ، سے ایک تو رات ہوگی اور سویرے لکھوں گا۔ اب تو وشرام کرو، سویرے لکھ دوں گا۔ اب وہیں پڑوس میں ساتھ میں ایک براہمنوں کا اور گھر تھا، کیونکہ کاشی کافی لمبا چوڑا چتر اور رات کو آنے جانے میں پیدل یاترا ہوتی تھی، اس میں کافی لگ جاتا تھا۔ اب پہلے میں آپ کو کتھا سناتا تھا، یہ تھوڑا ٹاپک چھوڑ دیتا تھا کیونکہ لمبا بن جاتا تھا، اس لیے اب مول ادیشے کو لیتے تھے، آج وہ ٹاپک سنانا چاہتا ہوں۔ پرماتما نے کہا کہ سویرے لکھ دیں گے، ایسی کہ جلدی ہوگی۔ اچھا نے سویرے لکھ دیو، دیر ہوگی۔ بتائے وہ رات نے پھر کہا، پرماتما نے کہا کہ آج تو آپ آئے ہو اور ان سروتاؤں کو ستسنگ سنا دو، آپ اپنے امرت وچن سنا دو۔ اب وہ سروانند نے تو اپنے ستسنگ سنایا، کیا کہتا ہے کہ انت سمے میں جو پرماتما کا دھیان کرتا ہوا، اس کا نام لیتا ہوا شری چھوڑتا ہے، وہ پرانی پرماتما کو پراپت ہوتا ہے، سورگ میں جاتا ہے۔ انت سمے میں جو پرماتما کا جاپ نہیں کرتا ہے، وہ نرک بھاگی ہوتا ہے۔ اس طرح کے ٹاپک چھیڑ چھیڑ کا اپنا ستسنگ سنایا۔ پھر وہ اپنے ساتھی براہمن کے گھر جا کر وشرام کیا، اور جس براہمن کے گھر پہ وہ رکا، اس براہمن کا لڑکا پرماتما سے اپدیشی تھا۔ اس لڑکے نے آ کر صبح بتایا پرمیشور کو کہ پرماتما، میرے پتا جی نے اور اس سروانند نے رات نے ایک تو مرغا کھایا اور شراب پی دونوں والے۔ پرماتما بولے، بیٹا کی بتاؤ میرے، تو دیکھی ان براہمنا کے لکشن۔ اک پتا گرودیو، یہ تو کتی کسائی ہے مانس کو جا ہوئے ہوئے۔ اور نری جھوٹ بولا، پرماتما میں بھی تو بھی پڑا ہوا ہوں، میں نے سارا دیکھ لیا، وہ جو آپ نے بتایا کتی جو کا چوں ہے، پر یہ ماننا نہیں دیتے نہ میری سنتے۔ پرماتما بولے، کوئی بات نہ بیٹا، ان کی کرڑائی بول دے رہی ہے، کال کے یاد ہی نہیں۔ اچھا سویرے سویرے پرماتما پھر گئے کہ ان کے براہمن کے گھر پہ پہنچ گئے کہ آج سروانند جی آؤ گھومنے چلتے ہیں، ٹٹی پانی وہ کہاں گے، گھوم پھراؤں گے، چرچا کرتے چلیں گے بھگوان کی وہاں تک۔ اب چلو تو چلو، سروانند بھی چل پڑا، دس بیس اور سیوک بھی، براہمن بھی ساتھ چل پڑے۔ اب کیا ہوا، سروانند کبیر صاحب بھی تھوڑا سا آگے نچلے گئے، سروانند ایک جاڑی کی اوڈ میں ٹٹی ہونے لگ گیا۔ پرماتما کہے کہ ٹٹی ہوتے ہو تو مالک تھے، ترنت ہی ایک کا منٹ میں واپس آ گئے، اور سروانند جاڑی کی اوٹ میں بیٹھا۔ پرماتما نے کہا، سروانند رام رام۔ سروانند نہیں بولا، پرماتما اور نکٹ سی ہو کے بولے، سروانند رام رام۔ سروانند نہ بولے، تیسری بار بھی کہا، سروانند سنا نہیں، رام رام۔ سروانند جی نہیں بولے۔ کبھی صاحب آگے آ کے گنگا کے پاس اپنا ہاتھ پیر دھوئے بیٹھ گئے۔ سروانند آیا، پہلے ہاتھ دھوئے، پھر نہایا، نہا کے پھر نے بولا، اور پھر لوٹا مانجا، گنی ہونتی لوٹا مانجا، کتی بری طرح اوپر تے چمکا دیا لوٹا۔ اس میں پرماتما سے کہنے لگا سروانند کے کبیر، تجھے کوئی عقل دی ہے بھگوان نے؟ پرماتما بولے، کہ غلطی ہوگی سوامی جی میرے تے، کہ آپ کو پتا نہیں کہ میں جنگل پانی جا رہا تھا اور ایسی ستیتھی میں رام کا نام اپویتر ہو جاتا، میں بول تھوڑا ہی سکتا تھا، ٹٹی ہوتے ہوئے رام کا نام تھوڑا ہی بولا جاتا ہے، اپویتر ہو جاتا۔ پرماتما بولے، اے ہے، کیا کہتے ہیں بھگوان کہ کرنی تج کتھنی کتھن یہ اگیانی دن رات، کوکر جو بھوکت پھریں یہ سنی سنائی بات۔ परमात्मा ने कहा रात्रि के समय आप क्या सत्संग में वचन फरमा रहे थे कि अंत समय में जो राम का नाम भगवान का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है भगवान तो वो स्वर्ग जाता है और जो भगवान का स्मरण नहीं करता अंत समय में वो नरक जाता है और टट्टी होते समय तेरी जान निकल जाए तो बेटा गया नरक में तू दे पता परमात्मा की न्यू बाट देखेगा कि नोलन दे टट्टी फिर बाद में मारूंगा श्वास तो गिन का डाल रखे बेटा किरा कित सूत बैठ जा सर्वानंद न्यू करे मटर मटर परमात्मा से कहने बात बदल गया ने बोला तेने लोटा नहीं मांझा लोटा नहीं मांझा परमात्मा बोले अकल के चोर परमात्मा कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भी साधो देखा ज्ञान का टोटा जंगल जावे गुदातर मांझे लोटा ए बुर कहीं के लोटे ने के कसूर कर रखा भाई इसने लाग रहा गेसाण तू परमात्मा उठ कर चल पड़े सर्वानंद और भी श्रोता साथ थे श्याम के उसके प्रवचन सुनकर ना डलावे थे तब वो नबी देखा रहा सचमुच तो उल्लू बोला कि मेर कह कुछ उसकी बात दौड़ भी कटवा दी भगवान ने वहां उसकी पॉलिश भी उतरवा दी सिंपल लैंग्वेज में तो संस्कृत तो वो नहीं जाने थे बोले बाढ़े आदमी इस बात ने तो पकड़ गया रात ने तो नू कह था भी अंत समय में जसवा से भगवान नहीं बजता बजा अंत समय में मर गया तो वो नरक जाता है और टट्टी होते आना भाई दस पांच मिनट तक लग गए जाकर जब मर जाता है फिर तो गया नरक में तो परमात्मा कबीर साहब कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो ना बेरा इसे श्वास को हो आवण हो के न हो नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे शास्त्र सिमरण करना खाना पीता बात किसी प्रकार भी विसर्जन कर रहे बाथरूम जापना भगवान ने सांस में सुमरण में याद रखे। अब सर्वानंद बोला अब लिख के दे दे मन वार हो वैसे परमात्मा बोले लिख लो परमात्मा उसने फिर लिख लिया शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ और कबीर साहब आ गए खूब तीन चार बार पढ़ के फिर अंगूठा लवाया एक गो आके भी दस्त करा लिए। अब उसने सोची भाई यहां मैं ठीक लिख के ले जाता हूं और घर में जाते ही के बिजली गिरे ये अक्सर उलट पुलट क्यों कर हो जाए। अब उसने देखा बाहर से पढ़ने लगा गेट में प्रवेश करते पहले तो क्या पढ़ता है बिल्कुल सही लिखा है ऐसे पढ़ता पढ़ता क्योंकि दो बार झटका ला जाए आदमी की गिग्गी दो बन जाती है सोचा देखूंगा क्यों कर बदल जाती है जो पढ़ता पढ़ता और मां सुनाऊ अक सुना बेटा सुनाऊ अक सुना जो कहते कहते कहा ठीक है अभी तक तो मां के सामने जाकर कहने लगा शास्त्रार्थ में जब मैं के ऊपर पहुंचा।